Now, good evening. Shall we continue with our subject that we began last evening? And we will refresh our memories by turning to Luke chapter 22.
Shyam ki shubh vandana. Hum apne dhyan ko Luka rachit susamachar mein lekar jayenge. Luka rachit susamachar 22 adhyay mein. Aur kal humne jo adhyayan kiya uske baare mein thoda vichar karenge.
And we will read, please, Brother Sam, in Luke 22, from verse 14 to the end of verse 16.
Aur Luka rachit susamachar 22 adhyay 14ve pad se lekar 16ve pad tak hum padhenge. Jab samay hua to Yeshu bhojan karne baitha aur prerit bhi uske saath baithe. Usne unse kaha, apne dukh uthane se purv meri badi abhilasha thi ki main tumhare saath fasal khaun, kyunki main tumse kehta hoon ki jab tak yah parmeshwar ke rajya mein pura na ho jaye, main ise fir kabhi nahi khaunga.
And may God bless His word and our study of it this evening.
परमेश्वर इस वचन को आज हमारे रात के अध्ययन में मदद करके दे, आशीष करके दे.
We spent some time last night looking at these verses and the teaching of them.
कल रात हमने कुछ समय बिताया था इन पदों को अध्ययन करने के लिए और इसके पीछे क्या शिक्षा है इसकी पहचान करने के लिए.
In keeping the Passover with His disciples, the Lord Jesus was looking back.
प्रभु यीशु मसीह जब फसह के पर्व अपने शिष्यों के साथ मना रहे थे तो वो पीछे की ओर देख रहे थे.
This was a national memorial to God's redeeming power.
ये इसराइलों के लिए एक राष्ट्रीय स्मृति थी जो उन्हें याद दिलाती थी कि परमेश्वर ने उनको कैसे छुड़ाया है.
The real beginning of their exodus from Egypt was in the night when the Passover took place.
और मिस्र से इसराइली जब निकले थे उसका वास्तविक आरंभ तब हुआ था जब वो उस रात को फसह का पर्व मना रहे थे.
Their God proved His power to save them.
परमेश्वर ने वहां पर अपने छुड़ाने वाली शक्ति को उनके जीवन में प्रदर्शित किया.
And He did so in virtue of a sacrifice that was a substitute for the firstborn.
और परमेश्वर ने इसको एक बलिदान के द्वारा संभव किया जो बलिदान उनके बदले में चढ़ाया गया था.
They were a people redeemed by blood.
वो एक ऐसी प्रजा है, लोग हैं जिनको खून के द्वारा खरीदा गया था.
And they were commanded as a nation that every year they were to look back and remember what God had done.
एक राष्ट्र के रूप में परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वो पीछे की ओर देखे और जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया उसको स्मरण करे.
But when the nation of Israel kept Passover,
लेकिन जब इस्राएली प्रजा इस फसह के पर्व को मनाती थी,
and everything ceased, all work ceased, and the whole nation was concentrated upon this wonderful feast.
पूरे राष्ट्र में कोई काम नहीं होता था, पूरे राष्ट्र का ध्यान इस पर्व को मनाने में लगा रहता था.
The activity of the nation was a witness to the nations round about them.
और इसराइलियों के जीवन में इस प्रकार के जो काम हो रहे थे वो चारों ओर के जो देश हैं, लोग हैं, उनके लिए गवाही थी.
Gentile nations watched the people of God.
अन्य जाति के देश परमेश्वर के लोगों की ओर आंखें लगाए हुए थे.
And so even as the nation remembered and kept the Passover feast,
और जैसे इसराइलियों ने इस स्मृति को याद किया और फसह के पर्व को मनाया,
they were proclaiming to the Gentiles around them something about the power of their redeeming God.
वो अपने चारों ओर के यहूदियों को, अन्य जातियों को परमेश्वर के छुटकारे के शक्ति को बता रहे थे.
And now the time had come that the Lord Jesus was about to give His life.
अब समय आ गया है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी प्राणों को दे.
He was the one of whom the Passover was but a picture.
और वो फसह का जो पर्व है वो प्रभु यीशु मसीह का ही एक चित्र है.
So now this was going to be the last Passover.
इसलिए अब ये अंतिम फसह होने वाला है.
And the Lord Jesus would go to the cross.
प्रभु यीशु मसीह क्रूस की ओर चढ़ जाएंगे.
And Paul would later write of him, Christ, our Passover is slain for us.
और पौलुस ने यीशु मसीह के इस विषय के बारे में लिखा कि मसीह जो हमारा फसह है वो मारा गया.
So the Savior was taking part here in Luke 22 in a national memorial to God's redeeming power.
इसलिए हमारा उद्धारकर्ता इस पर्व को इसलिए मना रहा था क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य या छुड़ाने वाली शक्ति को सारा राष्ट्र स्मरण कर रहा था.
With desire, I have desire to eat this Passover with you.
उसने कहा कि बड़े बोझ के साथ मैंने इस फसह को तुम्हारे साथ मनाने की इच्छा रखा है.
But if in verse 15 he is looking backward to Exodus 12,
अगर 15 में वो निर्गमन उसके 12वें अध्याय की ओर अपनी ध्यान को लगा रहा है तो
in verse 16 he is looking forward.
पर 16 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वो भविष्य की ओर देख रहा है.
He is looking into the future.
वो भविष्य की ओर आगे की ओर देख रहा है.
And he said, I say unto you, I will not any more eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God.
प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक यह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो जाए मैं इसे फिर कभी नहीं खाऊंगा.
In verse 18,
पद 18,
after he had took the cup and given thanks and given it to his disciples,
क्योंकि
after he had done that, verse 17 tells us what he had done.
पद 17 में हम देखते हैं कि उसने क्या किया.
Now in verse 18 he says unto them, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God shall come.
वो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए मैं दाखरस नहीं पीऊंगा.
So now the Lord is looking forward.
अब प्रभु यीशु मसीह भविष्य की ओर देख रहे हैं.
How far forward?
कितने अब आगे की ओर?
Until the kingdom of God is come.
जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए.
When will that be?
ये परमेश्वर का राज्य कब आएगा?
You know the answer to that now for the studies this week.
आपको पिछले सप्ते दिनों की पढ़ाई से मालूम होगा ये कब होने वाला है.
It will be the millennial reign of the Lord Jesus Christ.
वो प्रभु यीशु मसीह के हजार वर्ष के राज्य में होगा.
And let us marvel again tonight at the tremendous grace of the Lord Jesus.
और आज हम इस बात को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं कि परमेश्वर का अनुग्रह कैसे दिखाए.
The nation has rejected him.
देखिए, इस्राएल ने उसको त्याग दिया.
He has come unto his own, they have received him not.
वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया.
Very shortly their voices are going to be raised in hatred. Crucify him. We will not have this to reign over us.
इसके बाद जल्दी उनकी आवाजें उठने वाली हैं, चलो इसे क्रूस पर चढ़ाओ क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर राज्य करे.
And he knows that.
और प्रभु यीशु मसीह को यह स्पष्ट रूप से मालूम था.
And yet in wonderful grace he's looking forward to the day when he will sit down with the nation restored. And he will have fellowship with them.
इतना वो करेंगे उनके साथ, फिर भी प्रभु यीशु मसीह भविष्य को देखकर कहते हैं, उस दिन को याद करते हैं जब ये सारे लोग उनके साथ बैठेंगे और उनके साथ इस इमेज में शामिल होंगे.
Because in the millennial reign of the Lord Jesus, there will also be a wonderful memorial to God's redeeming power.
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के उस हजार साल के राज्य में परमेश्वर के सामर्थ्य को याद करके एक स्मरण किया जाएगा.
Israel will have been restored.
इज़राइल का पुनर्स्थापना हो जाएगा.
The tribe of Levi purified, Malachi says.
और मलाकी हमें याद दिलाता है कि लेवियों के वंश को उसका शुद्धिकरण होगा.
And they will have come into all the joy and the dignity of the millennial reign with Christ.
और ये सारे लोग यहूदी प्रभु यीशु मसीह के उस हजार वर्ष के राज्य के आनंद और सामर्थ्य में आ जाएंगे.
Israel will now be in the millennium a kingdom of priests.
और उस हजार वर्ष के राज्य में इसराइल एक याजकों का राज्य बन जाएगा.
They will be dwelling with Zion in the center of them.
और वो सियोन में उनके मध्य में रहेगा.
That city of the great king, beautiful for situation.
और ये परमेश्वर का महान राज्य सही स्थान पर स्थित है.
Just as they once dwelt in their tents around the tabernacle.
जैसे वो एक समय तंबू के चारों ओर तंबू में रहते थे.
They will now be dwelling in their booths around the glorious temple city of Jerusalem.
अब वे तंबुओं में इस महिमा से भरे हुए यरूशलेम शहर के चारों ओर रहेंगे.
The priesthood will not now be restricted to one family within the tribe of Levi.
अब ये जो याजक का जो क्रम है एक परिवार के अंदर लेवी के एक परिवार के अंदर सीमित नहीं रहेगा.
They will be a nation of priests.
अब वे याजकों के एक राष्ट्र बन जाएंगे.
All of them engaged in the service of their God.
और ये सब अपने परमेश्वर की सेवकाई में लग जाएंगे.
What will they be doing in that temple?
और उस मंदिर में ये क्या करेंगे?
Well, now Ezekiel tells us what will be happening.
अब इज़ेकियल हमें याद दिलाता है कि वहां पर वो क्या करेंगे.
And from chapter 43 onwards in Ezekiel's prophecy,
इज़ेकियल की भविष्यवाणी के 43वें अध्याय से आगे हम देखेंगे.
He starts to tell us,
वो हमसे कहता है,
and many Bible readers are surprised by this,
और कई परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने वाले बात को पढ़कर आश्चर्यचकित है.
He starts to tell us that there will be sacrifices offered.
वो फिर से हमें याद दिलाता है कि फिर बलिदान शुरू हो जाएंगे.
Not only the sweet savor offerings,
ना केवल उस अच्छे सुगंध वाले जो बलिदान है,
those offerings that were pleasant to God, the burnt offering, the meal offering, the peace offering.
और सारे बलिदान जो होम बलि है, पाप बलि है, शांति का जो बलि, ये सारे बलि वहां चढ़ाए जाएंगे.
But there will be sin offerings and trespass offerings.
और इतना ही नहीं, पाप बलि भी चढ़ाए जाएंगे.
And believers sometimes read this passage of scripture and they say, well, this puzzles me because why should there be offerings for sin in the millennial temple?
और कई विश्वासी इस भाग को पढ़कर असमंजस में पड़ जाते हैं कि हजार वर्ष के राज्य में पाप बलि क्यों चढ़ाया जा रहा है.
Well, now the first thing we can say,
तो जो पहला उत्तर इसके लिए हम ये पाते हैं,
is that those offerings will not be for the putting away of sin.
ये बलिदान पाप को दूर करने के लिए नहीं चढ़ाए जाएंगे.
The writer to the Hebrews is very clear about that.
इब्रानियों को लिखने वाला इस बात को लिखकर हमें याद दिलाता है.
Christ has appeared once in the end of the age to put away sin by the sacrifice of himself.
मसीह युग के अंत में हमारे बीच में आया कि पाप के बलिदान को हमेशा के लिए हमारे बीच से दूर कर दे.
The one sacrifice of the Lord Jesus was the fulfillment of every sacrifice that had taken place before.
प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान था, इसके पहले हुए सारे बलिदानों को पूर्ण करने वाला था.
No blood, no altar now.
अब ना लहू ना वेदी.
The sacrifice is finished.
क्योंकि बलिदान हो चुका है.
Why then are these sacrifices offered?
फिर ये बलिदान क्यों चढ़ाए जाते थे?
Well now, I think the answer is very simple.
इसका उत्तर बहुत साधारण है.
Once Israel has been restored to Jehovah,
जब इस्राएल की पुनर्स्थापना अपने परमेश्वर यहोवा के साथ पास हो गई,
and the millennial kingdom is established,
और हजार वर्ष का राज्य आरंभ हो चुका है,
and they are functioning as a priesthood,
अब वे एक प्रजाजक गण के रूप में जब काम कर रहे हैं,
then the privilege of bearing a national memorial to God's redeeming power,
तब परमेश्वर के छुटकारे के उस स्मृति को स्मरण दिलाने के लिए,
that privilege which they had in Old Testament days through the Passover,
ये अवसर उनके पास पुराने नियम में फसह के द्वारा था,
that privilege which was taken away from them when they crucified Christ,
और ये जो अवसर उनका था यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के कारण उनके पास से ले लिया गया था,
that privilege is going to be given back to them.
अब ये अवसर उनके जीवन में फिर से दिया जा रहा है.
They are going now to be engaged in a perpetual memorial to the finished work of Christ at Calvary.
आप कालवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस काम को संपूर्ण किया है, उसकी एक स्मृति अब की जा स्मरण किया जा रहा है.
For the first time in their history,
पहली बार उनके इतिहास में,
Israel will understand what these sacrifices mean.
इसराइल पहली बार समझेगा कि ये जो बलिदान वो चढ़ाते थे, इसका क्या अर्थ था.
Not one priest in the Old Testament understood what he was doing.
सच में कहे तो पुराने नियम में एक भी याजक वो जो काम को कर रहा है कभी समझ नहीं पाया था.
There was a pattern that he had to follow.
उसके लिए एक विधि थी जिसका वो पालन कर रहा था.
And he did that.
और उसने उस काम को किया.
But he didn't know that what he was doing spoke of Christ.
लेकिन वो याजक जो काम को कर रहा था, उसे नहीं मालूम था कि ये मसीह के बारे में बताया जा रहा है.
The nation never did know.
और ये राज्य के रूप में इसराइल कभी नहीं जानता था.
Ah, but with eyes opened in the millennial reign, they'll know then.
लेकिन हजार वर्ष के राज्य में उनकी आंखें खुल जाएगी और उस सत्य को वो समझेंगे.
So all those offerings which are offered in the millennial temple,
इसलिए उस हजार वर्ष के राज्य में परमेश्वर के मंदिर में ये जो बलि चढ़ाई जाएगी,
will form one glorious memorial to Christ.
वो प्रभु यीशु मसीह के स्मरण में चढ़ाई जाएंगी.
Those offerings of Leviticus 1-7,
और लेवी व्यवस्था एक से लेकर सात तक जब हम बलिदानों को देखते हैं,
the day of atonement in Leviticus 16,
और लेवियों की व्यवस्था उसके 16वें अध्याय में जो छुटकारे का जो दिन है,
the sacrifice of the red heifer in Numbers 19,
और उस लाल मेढ़ को जो चढ़ाया जाता है लेवी व्यवस्था उसके 19वें अध्याय में.
Are you teaching the saints all this stuff, brethren?
क्या आप अपने विश्वासियों को ये सारी बातें सिखा रही हैं?
Do you enjoy those things in your own soul? Do you understand them?
क्या उन सत्यों को आप समझ कर सिखा पा रहे हैं?
The believers you are hoping and attempting to lead with the Lord's help, they need a ministry of Christ.
जो विश्वासियों को आप चला रहे हैं उनके बीच में मसीह की एक सेवकाई होनी चाहिए, क्या वो समझ पा रहे हैं?
Are you able to teach them these things?
क्या आप उन लोगों को ये सत्य सिखाते हैं?
I get back to your Bibles.
हम अपने बाइबल की ओर वापस
study these things.
इन बातों को हम सीखें.
With the Lord's help, bring Christ out of the scriptures for the saints.
यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की सहायता से यीशु मसीह को हर पन्नों में हम उठाकर दिखाएं.
We will lift the worship of God's people.
और अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर के लोग और अच्छे से उसकी आराधना कर पाएंगे.
Israel was ignorant of all this.
और इसराइल इन बातों से अनभिज्ञ था.
But we shouldn't be.
लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए.
And in that day, Israel will be ignorant no longer.
और उन दिनों में इसराइल इसके बारे में अनभिज्ञ ना रहेगा.
And even as every sacrifice is offered,
और जैसे एक एक बलिदान चढ़ाया जाएगा,
it will be the nation presenting a memorial to the finished work of Christ that brought them into the place where they are.
तब राष्ट्र इसराइल राष्ट्र संपूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण हुए उस बलिदान के कार्य को पूर्ण रूप से एक राष्ट्र के रूप में स्मरण करेगा और उसके महत्व को जान पाएगा.
That will have another effect.
और उसका एक अलग असर होगा.
It will be a witness.
और ये एक गवाही होगी.
Zechariah speaks in chapter 14 of the Gentile nations going up to the temple to worship.
Zechariah nabi adhyay 14 mein apne anya jatiyon ko mandir mein aaradhna ke liye jaate hue batata hai.
Remember, people in the millennium will be sinners.
आपको मैं बता दूं, हजार साल के राज्य में रहने वाले लोग पापी रहेंगे.
And people born in the millennium will still need to be justified by faith.
और हजार साल के उस राज्य में जो लोगों का जन्म होगा उनका फिर से विश्वास के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त करना आवश्यक होगा.
Today men are brought to faith through the preaching of the gospel of the grace of God.
आज परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार के प्रचार को सुनकर लोग उद्धार में आते हैं.
And in the tribulation period men will be brought to faith through the preaching of the gospel of the kingdom.
और जब महाक्लेश काल का समय होगा तब राज्य के सुसमाचार का प्रचार के द्वारा लोग विश्वास में आएंगे.
How will men be brought to faith in the millennium?
और जब हजार वर्ष का राज्य होगा तब लोग कैसे विश्वास में आएंगे?
They will know of the king who is reigning.
तब वो राजा को पहचानेंगे जो राज्य कर रहा है.
They will know the glory of the king of kings and the lord of lords.
और वो राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु की महिमा को देखेंगे.
But what will they know about his saving work?
लेकिन उसके उद्धार के उस काम के बारे में वो क्या जानेंगे?
What will they know about his work for sinners?
तो पापियों के लिए उसने क्या किया है उसके बारे में वो क्या जानेंगे?
They'll see it in the sacrifices in the temple.
और जब मंदिर में बलिदान चढ़ाए जाएंगे तब उस बात को देखकर उन्हें वो सत्य याद आएगा.
There will be a constant living full color glorious 3D message of the gospel in those sacrifices there.
उन बलिदानों में संपूर्ण सप्तरंगी सुसमाचार का संदेश इन लोगों के पास तक पहुंचेगा.
And those who are brought to faith through the witness of that glorious message will bring their praises and their worship and their adoration to Christ in the glorious city.
और जितने लोग इस महान कार्य को देखकर विश्वास में आएंगे वो उस मंदिर में आकर परमेश्वर की आराधना करेंगे.
So we have thought about Israel's privilege and responsibility of bearing a memorial in the past.
इसलिए हम देखते हैं इसराइल को परमेश्वर ने जो जिम्मेदारियों को दिया है और उनको जो बड़ा स्थान दिया उसके बारे में पढ़ते हैं.
They were the people on earth with the solemn charge to witness to God and his redeeming power.
ये वो लोग हैं धरती पर जो परमेश्वर के बारे में और उसके छुटकारे के सामर्थ्य के बारे में दूसरों के सामने गवाह बनना है.
For their wickedness in crucifying their Messiah.
और अपने बुराई में अपने कठोर स्वभाव में उन्होंने मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया.
That was taken away from them.
अब वो बात उनके ऊपर से दोष हटा दिया गया है.
Israel has no witness for God today.
इसराइल के पास आज कोई गवाही नहीं है.
As far as this dispensation is concerned, there is nothing special about the Jew.
जहां तक आज के इस युग के बारे में कहा जाए, एक यहूदी के संबंध में कहा जाए, तो कोई विशेष बात उनमें नहीं है.
The Jew can get saved today, but it's on exactly the same ground as anybody else.
आज एक यहूदी उद्धार को पा सकता है, लेकिन उसी क्रम में जैसे हम में से हर एक ने पाया है.
There is no special ministry to the Jew.
आज यहूदियों के लिए एक विशेष सेवकाई नहीं है.
There is no special message for the Jew.
और आज यहूदी के लिए एक विशेष संदेश भी नहीं है.
The gospel's for the whosoever.
और ये सुसमाचार कहता है कि ये सबके लिए।
God has set them to one side.
परमेश्वर ने आज उन्हें अलग हटा कर रख दिया है।
How can they give any witness to him that is credible in a world where they crucified his son?
और वो आज उसकी क्या गवाही दे सकते हैं जब उन्होंने इस संसार में अपने मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया है?
But they will bear a witness in a future day.
लेकिन भविष्य में वो एक गवाह बनेंगे।
So what about in between?
तो इसके बीच में क्या होगा?
What about now?
आज, आज क्या है?
Who is there on earth today who can bear this public witness to God and His redeeming grace?
आज इस पृथ्वी में ऐसा कौन है जो सामूहिक रूप से परमेश्वर के छुटकारे के उस सामर्थ्य का स्मरण लोगों के सामने गवाही दिखा सकता है?
That privilege has been given to the church.
आज ये अवसर कलीसिया को दिया गया है।
And the privilege of the church today is to maintain the Lord's Supper.
आज परमेश्वर के कलीसिया को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि प्रभु के मेज का वो पालन करे।
The Lord's Supper is a memorial.
और प्रभु का जो मेज है वो एक स्मृति चिन्ह है।
When the Lord Jesus said, "This do in remembrance of me."
जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे स्मरण में किया करो,
He was not suggesting for one second that we need to do it, otherwise we will forget Him.
वो इसलिए इसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि अगर प्रभु ऐसा नहीं कहता तो शायद हम ये करना भूल जाते।
My wife says to me, if I go to the local store,
मेरी पत्नी ऐसा कहती है जब मैं बाजार जाता हूँ,
Don't forget to get me that butter.
वो बटर।
Don't forget to get me that butter.
वो बटर ले आने के लिए मत भूलना।
And then I go in and I see the biscuits and all this kind of stuff and I forget the butter.
और मैं बाजार जाता हूँ, बहुत सारे चीजों को देखता हूँ, बटर के बारे में भूल जाता हूँ।
And she is exhorting me to remember because she knows I'm likely to forget.
वो मुझे बार बार इसलिए याद दिलाती है क्योंकि उसे मालूम है कि मैं भूलक्कड़ हूँ।
But that's not how the Savior speaks to us.
लेकिन प्रभु जब ये कह रहे हैं तो हमें ऐसा देखकर नहीं कह रहे हैं।
What? Would we forget him in one week?
क्या एक सप्ताह के अंदर हम उसको भूल जाएंगे?
No.
कभी नहीं।
You've just had your Republic Day.
आपने अपने गणतंत्र दिवस को मनाया।
We have special days.
हमारे भी कुछ विशेष दिन होते हैं।
They are memorial days.
ये सब स्मृति दिन होते हैं।
They are memorial days, not so that we don't forget.
वो स्मृति दिन इसलिए नहीं है कि हम उसे भूल जाएं।
But because we won't forget.
लेकिन वो इसलिए स्मृति दिन है क्योंकि हम उसे भूलेंगे नहीं।
These things are because we have not forgotten.
और ये इसलिए कि हमने इन बातों को भूला नहीं है।
So when the Lord Jesus said this do in remembrance of me,
जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम मेरे स्मरण में किया करो,
the preposition is this do for a remembrance of me.
वो शब्द इस प्रकार से डाला जाता है कि तुम इसे मेरे याद में किया करो।
This do for a memorial to me.
ये मेरे स्मरण में किया करो।
You have the solemn responsibility not once a year but once a week.
आपको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस काम को साल में एक बार नहीं, सप्ताह में एक बार आप करें।
Of erecting a fresh memorial to me.
कि हर सप्ताह प्रभु के लिए एक स्मृति के स्मारक को हम खड़ा करें।
So in verse 20 of Luke 22,
इसलिए लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय के 20 पद में,
Only Luke tells us this.
सिर्फ लूक ने इस घटना को लिखा है।
If we read Matthew, we read Mark.
हमने मत्ती पढ़ा, मरकुस को पढ़ा।
They tell us that the Last Supper was kept.
वो इतना कहते हैं कि अंतिम भोज रखा गया था।
But they don't inform us that there was any thought that these things would continue.
लेकिन उन्होंने कभी भी हमें ये नहीं बताया कि ये बातें आगे भी चलेंगी।
But Luke says,
लेकिन लूका कहता है,
Likewise also the cup after supper.
वो प्याला जो तुम्हारे लिए उसी प्याला जब वे खा चुके तो उसी प्रकार उसने प्याला लेकर कहा,
This cup is the new covenant in my blood which is shed for you.
ये प्याला जो तुम्हारे लिए उंडेला गया है मेरी लहू में एक नई वाचा है।
We come to another point that brings problems to some people.
और एक और विषय में हम देखेंगे जो लोगों के लिए बड़ा समस्या का विषय बना हुआ है।
Where does the church stand in relation to the new covenant?
इस नई वाचा के आधार पर देखें तो कलीसिया का क्या स्थान है?
Jeremiah makes it very clear that the new covenant is made with Israel.
यरमिया इस बात को स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि नई जो वाचा है इसराइल के साथ बांधी गई है।
And some people say, some brethren say, well, we shouldn't be breaking bread. This is all for Israel.
कई भाई इस प्रकार भी कहते हैं कि हमें रोटी तोड़ने नहीं चाहिए क्योंकि ये यहूदियों के लिए कहा गया है।
New covenant is not made with us.
क्योंकि नई जो वाचा है हमारे साथ नहीं बनाई गई है।
And often, as any teacher should, I suppose,
और जैसा एक एक टीचर को हमेशा इस बात का ध्यान देना है.
Often I have tried to think of different ways to teach this clearly.
कई बार मैंने कई तरीकों का उपयोग किया है कि ये सत्य को लोगों तक पहुंचा सकूं.
Where does the church stand in relation to the new covenant?
नई वाचा के संबंध में कलीसिया का क्या स्थान है?
I think I've got a clear illustration now.
मुझे लगता है कि मेरे पास एक अच्छा दृष्टांत है.
Do you know where I got it?
आपको मालूम है मैं मेरे पास क्या है?
Two or three days ago, while eating with you brethren in that hall there.
2-3 दिन पहले जब मैं आप भाइयों के साथ वहां भोजन कर रहा था डाइनिंग हॉल में.
See, the Indian believers are very kind, and they look and they think, European, he won't like Indian food.
जो भारतीय भाई बहन है वो बड़े दयालु हैं. हम यूरोपियंस को देखकर वो सोचते हैं कि ये हमारा खाना नहीं खा सकते.
I love Indian food.
मुझे भारतीय भोजन बहुत पसंद है.
Very happy with Indian food.
और मैं ये भारतीय भोजन खाना मेरा मुझे आनंद लगता है.
And I don't want any special food. I just want what the believers eat. That's all.
और इसलिए मुझे कोई विशेष भोजन की जरूरत नहीं है. मुझे बस जो विश्वासी खा रहे वो ही चाहिए.
So now brethren are very kind.
यहाँ के भाई बहुत दयालु है.
Brother Sam especially is very kind.
विशेष करके भाई सैम कुमार बहुत दयालु है.
So now every meal time Sam comes and he's got a tray.
और हर बार जब मैं भोजन के लिए वहां जाता हूं भाई सैम कुमार एक ट्रे लेकर मेरे पास पहुंच जाते हैं.
Brother, this is yours.
वो कहते हैं कि भाई आपका है.
Some custard, some papaya.
उसमें कुछ कस्टर्ड होता है कुछ पपीता होता है.
Maybe some curds, some special things.
हो सकता है कुछ दही भी होती है उसमें.
I said, Sam, I don't need this. I don't want special.
मैं उनसे कहता हूं भाई सैम मुझे स्पेशल आहार आज भोजन की जरूरत नहीं है.
Brother, you must have it. This is yours.
वो जोर करते हैं भाई आपको ये खाना ही पड़ेगा ये आपका ही है.
So now I was sitting with 3 or 4 other brethren.
अब मैं 2-3 अन्य भाइयों के साथ बैठा हुआ था.
And I was enjoying what I was eating.
और जो मैं खा रहा था उसका मैं आनंद उठा रहा था.
I said, brethren, look, I don't want this.
मैंने उनसे कहा भाई ये मुझे चाहिए नहीं.
But I don't want to appear ungrateful.
लेकिन मैं थोड़ा बुरा नहीं लगना दिखना भी चाहता हूँ.
Would you like it?
क्या आप इसमें से शामिल होना चाहेंगे?
It was like a magic trick.
और ये एक मैजिक के समान था.
Woof, it was gone.
और तुरंत सब कुछ खत्म हो गया.
And I thought that must be very special food.
तब मुझे समझ में आया ये जरूर विशेष आहार था.
So now every meal time has been the same.
इसलिए हर बार जब मैं भोजन के लिए यहाँ डाइनिंग हॉल में बैठता हूँ तो ऐसा माहौल मुझे दिखता है.
Dear brother brings me a tray.
भाई मेरे पास एक ट्रे लेकर आते हैं.
It has been prepared for me.
वो मेरे लिए विशेष रूप से बनाया गया है.
But I don't want it.
लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है.
But it's not wasted.
लेकिन वो कभी भी खराब नहीं फेंका नहीं जाता.
Because people for whom it was not prepared have enjoyed it.
क्योंकि जिन लोगों के लिए वो बनाया नहीं गया था उन्होंने उसका लुफ्त उठाया आनंद उठाया.
The new covenant is made with Israel.
नई वाचा इसराइल के साथ बनाया गया है.
But Israel rejected it.
लेकिन इसराइल ने उसका त्याग कर दिया.
And God says this isn't going to be wasted.
परमेश्वर ने कहा ये इसको हम फेंकेंगे नहीं ये व्यर्थ में नहीं जाएगा.
And so now people for whom it was not prepared are enjoying the benefits of the new covenant.
इसलिए ठीक उसी प्रकार जिन लोगों के लिए तैयार नहीं किया गया था ये नई वाचा वो लोग उसका आनंद को उठा रहे हैं लुफ्त को उठा रहे हैं.
That is the relationship of the church to the new covenant.
और यही रिश्ता है कलीसिया का नई वाचा के साथ.
Thank you, Brother Sam, for giving me that illustration.
भाई सैम कुमार धन्यवाद इस सुंदर से दृष्टांत को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए.
But I do think it explains it.
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आप उसके अर्थ को समझ गए होंगे.
The covenant is with Israel.
कि ये जो वाचा है यहूदी के साथ ही बांधा गया है.
But they, to use Paul's words, have counted themselves unworthy of it.
लेकिन जैसे पौलुस कहता है कि उन्होंने उसको उसके अपने आप को उसके लिए योग्य नहीं समझा.
So now we enjoy it.
इसलिए हम उसका आनंद उठा रहे हैं.
And the Lord Jesus said, "This cup is the blood. This cup is the new covenant in my blood, which is shed for you."
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह प्याला जो तुम्हारे लिए उंडेला गया है, मेरी लहू में एक नई वाचा है.
Now in 1 Corinthians chapter 11, Paul is going to give us the doctrine of that.
अब पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में प्रेरित पौलुस उसके उपदेश सत्यों से हमें अवगत करवाता है.
And as we come to 1 Corinthians 11,
और जब हम पहला कुरिन्थियों उसके 11वें अध्याय में आते हैं,
let me just remind you of one or two points we made last night from 1 Corinthians 10.
और पहला कुरिन्थियों 10 में से कुछ बातों को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा.
We were trying to explain some of the distinction between the Lord's table and the Lord's supper.
हम प्रभु का मेज और प्रभु भोज जो है उसके बीच के फर्क को देख रहे थे.
The Lord's table in chapter 10
दसवें अध्याय में जो प्रभु का मेज है
is contrasted with the table of demons.
वो उसकी जो तुलना है दुष्टात्माओं के जो मेज उससे किया गया.
It is to do with a place from which individuals obtain their provision.
वो एक ऐसा स्थान है जहां से व्यक्तिगत रूप से हम कुछ प्राप्त करते हैं.
And Paul is making the point that if you partake of the sacrifice,
इससे प्रेरित पौलुस ने याद दिलाता है अगर तुम उस बलिदान में शामिल होंगे,
you are identifying yourself with the altar on which that sacrifice was given.
तुम अपने आप को उस वेदी के साथ जोड़ रहे हो जहां पर ये बलिदान चढ़ाया गया था.
So he points out to the Corinthians that they weren't to be careless about simply taking food that they knew had been offered to idols.
इसलिए प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के विश्वासियों को याद दिलाता है कि जब तुम मूर्तियों के सामने चढ़ाए गए भोजन में से उस वेदी से शाम भाग लेते हो तो इसमें बड़ा ध्यान देना.
To do so deliberately and carelessly was to identify themselves with the altar that sacrifice was associated with.
और अगर तुम जानबूझकर उसमें शामिल होगे तो तुम अपने आप को उस वेदी के साथ जोड़ लेते हो जहां पर मूर्तियों के लिए यह चढ़ाया गया था.
And behind that idolatrous altar there is a demon.
और उस मूर्ति के पीछे एक दुष्टात्मा है.
So you see what he's doing, he's contrasting a table of demons with a table of the Lord.
इसलिए हम देखते हैं कि वो दुष्टात्मा का जो मेज है उसका परमेश्वर प्रभु का जो मेज है उसके साथ तुलना कर रहा है.
And he told them, you cannot, not you must not, you cannot eat of both.
और वो कहता है कि तुम इसमें से बिल्कुल नहीं खा सकते.
And the reason why a Christian cannot partake of that altar of demons,
इसलिए एक कारण जिस कारण से एक विश्वासी इन दुष्टात्माओं के उस मेज से शामिल हो नहीं सकता,
is because in salvation he has become associated with the altar of Calvary.
इसका कारण यह है कि जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है उसकी संगति कालवरी के उस वेदी के साथ हो जाता है.
And at Calvary we saw from the Roman epistle,
और रोमियो की पत्री में से हमने कालवरी के संबंध में देखा,
it wasn't only that Christ died for me,
कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया इतना ही नहीं,
but I died with Christ.
लेकिन मैं मसीह के साथ मारा गया.
I'm dead to that order of things.
अब वो पुरानी बातों के लिए मैं मर चुका हूं.
So now Paul says, when you partake of that table, it's an individual thing.
इससे प्रेरित पौलुस कहता है कि जब तुम उस मेज से भाग लेती हो तो एक व्यक्तिगत बात है.
It's about provision for you.
वो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है.
And it is saying something about your death in Christ.
और वो तुम्हारी मृत्यु जो मसीह में हुई है उसके बारे में तुम्हें याद दिलाती है.
Now when we come to the Lord's Supper in chapter 11,
लेकिन जब हम 11वें अध्याय के प्रभु भोज के बारे में देखते हैं,
we find that the Lord's Supper is not about provision.
हम देखते हैं कि ये जो प्रभु भोज है जो उन्हें प्राप्त हुआ व्यक्तिगत उसके बारे में नहीं,
it is about a proclamation.
लेकिन यहां पर किसी बात के बारे में घोषणा हो रही है.
We find when we come to chapter 11,
हम पढ़ते हैं अध्याय 11 में,
that it's not an individual thing,
कि यहां पर एक व्यक्तिगत बात नहीं हो रही है.
It is a collective thing.
यहां पर एक सामूहिक बात हो रही है.
The assembly has come together.
यहां देखिए कलीसिया एक साथ आई है.
We don't keep the Lord's Supper individually, each one in his own home. We come together to do it. It's a collective thing.
हम प्रभु भोज एक एक व्यक्ति अपने घर में नहीं करता, हम सामूहिक रूप से जब आते इस काम को करते हैं.
In 1 Corinthians 10, it's associated with my death with Christ.
पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय में मसीह में मेरी जो मृत्यु हुई उसके साथ इसका संबंध है.
But in chapter 11 we are showing forth his death.
लेकिन जब 11वें अध्याय में आते हैं, जब वहां पर हम मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं,
in chapter 10 I am showing that I am identified with the body.
जब 10वें अध्याय को हम देखते हैं वहां पर मैं ये बता रहा हूं कि मैं उसके शरीर के साथ अपने आप को जोड़ रहा हूं.
The fellowship of the blood of Christ.
प्रभु यीशु मसीह की लहू की संगति.
The fellowship of the body of Christ.
प्रभु यीशु मसीह की शरीर की संगति.
I am showing that I am part of the body.
मैं ये बता रहा हूं कि मैं उस शरीर का भाग हूं.
But in chapter 11,
लेकिन जब अध्याय 11 में आते हैं,
the body is acknowledging the head.
और वहां पर शरीर सर को जो शीर्ष स्थान है वो दे रहा है.
And the body is setting forth the lordship of the one who is the head.
और शरीर अपना जो सर है उसके जो प्रभुत्व है उसको बता रहा है.
Now brother, please, I'm not going to suggest you should be excommunicated if you talk about the Lord's table on a Sunday morning.
भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अगर आप प्रभु के मेज के बारे में अगर रविवार के दिन कहे तो आपको कलीसिया से निकाल देना चाहिए.
But with the things that I have just described, the differences I've pointed out,
लेकिन जो सत्यों को और जो अंतर को मैंने पवित्र शास्त्र से आपके सामने बताया है,
you would agree that they are different things.
आपको ये ज्ञात हो गया होगा, मालूम हो गया कि ये दोनों बातें दो अलग बात है.
The Lord's table is the place of provision for individual believers every moment of the week.
प्रभु का मेज हर एक विश्वासी को व्यक्तिगत रूप से प्रभु से मिलने वाले कुछ मिल प्राप्त करने वाला वो जगह है.
It's the place where I draw my sustenance.
वो एक स्थान है जहां पर मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभु से कुछ प्राप्त करता हूं.
It is the place of my personal fellowship with my Savior.
वो ऐसा एक स्थान है जहां पर मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे उद्धारकर्ता के साथ संगति में हूं.
And it is those things I enjoy at his table through the week.
और पूरे सप्ताह भर में उसके मेज के पास जो कुछ मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया
that give me something to present back to God in worship at his supper on a Lord's day.
वो मेरे पास कुछ ऐसी बातों को देता है जो मैं प्रभु के सामने दे सकता हूं और उसकी आराधना कर सकता हूं.
Interesting to note that between the table in chapter 10
और एक बड़ी रोचक बात है कि जो प्रभु का मेज दो जसो अध्याय में कहा गया है
and the supper in chapter 11
और 11वें अध्याय में प्रभु भोज जो कहा गया इन दोनों के बीच में
there is teaching concerning the principle of the headship of Christ.
और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के जो शीर्ष स्थान है उसके बारे में एक शिक्षा है.
And we are told that when in a local assembly the headship of Christ is recognized,
और यहां कहा गया है कि जब एक स्थानीय कलीसिया में मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के शीर्ष स्थान सर के स्थान को जब वो लोग स्वीकार करते हैं,
it will be done so in an outward way.
और उसका एक बाहरी चित्र भी होगा.
Now that's interesting because in the church today there's very little that is outward, very little that is external.
और आज ये भी रोचक है कि कलीसिया में बाहरी रूप से दिखने वाली बहुत कम बात है.
Peter says we are all priests.
पत्रस कहता है कि हम याजकों का समाज है.
But we don't wear special clothing, do we?
लेकिन हमारे पास कुछ विशेष कपड़े हैं नहीं.
The writer to the Hebrews in chapter 13 says we have an altar.
इब्रानियों के पत्र उसके 13वें अध्याय में इब्रानियों को लिखने वाला कहता है कि हमारा एक वेदी है.
But it's not a physical one.
लेकिन वो एक भौतिक रूप से दिखाई देने वाला नहीं.
Everything that was real and that could be touched and felt and seen in the Old Testament is all spiritual in the New.
सब वो सारी बातें जिनको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम पुराने नियम में देखते हैं, नए नियम में आते हैं तो हम पाते हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो आत्मिक है.
But there are three things that the church has to do which are external. They are there to be seen.
लेकिन तीन ऐसी बातें हैं जैसे कलीसिया को करनी है जो बाहरी है या हमें बाहर से दिखाई देती है.
The first of them is believer's baptism.
सबसे पहली बात है विश्वासियों का बपतिस्मा.
It is a visible external act.
ये एक ऐसा बाहरी क्रिया है जिसको सब लोग देख सकते हैं.
The second of them,
दूसरी जो बात है,
is the head covering of the woman.
वो है बहनों के स्त्रियों का सर ढकना.
And the third of them,
और तीसरी जो बात है,
is the Lord's Supper.
वो है प्रभु का भोज.
These are all things which we do externally.
ये तीनों बात हम बाह्य रूप से करते हैं.
When we look at the doctrine in 1 Corinthians 11,
और पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में जब हम उसके सिद्धांतों को देखते हैं, उपदेश सत्यों को देखते हैं,
we are told in verse 26,
हमें पद 26 में कहा गया है,
For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come.
क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो.
That word show,
यहां पर प्रचार करते हैं जो कहा गया है.
In other places is translated preach or proclaim.
दूसरे जगहों में इसका जो हिंदी में प्रचार करके कहा गया है.
So as often as we eat the bread and drink the cup,
इसलिए जब भी हम इस रोटी को खाते और कटोरे से पीते हैं,
we're making a proclamation.
हम एक प्रचार कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं.
A company of Christians as they break bread is preaching something.
जब विश्वासियों का समूह रोटी तोड़ता है तो वहां पर कुछ प्रचार हो रहा है.
Who are we preaching to?
हम किसको प्रचार, किसके सामने प्रचार कर रहे हैं?
Huh? The world around, brother? If it was the world around, I wonder why the Lord told his disciples in private to do this.
अगर ये हमारे चारों ओर के लोगों की ओर है जैसे कहा गया है तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें गुप्त रूप से ये करने के लिए क्यों कहा?
The Lord didn't institute this on the hills of Galilee.
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रक्रिया को गलील के उन पहाड़ों पर नहीं किया जहां पर बहुत से लोग हैं.
He didn't do so in the midst of a crowd on the seashore.
और समुद्र के किनारे जब वो थे प्रचार कर रहे थे वहां पर उन्होंने इस काम को नहीं किया जब बहुत भीड़ थी.
He deliberately took his disciples into an upper room above street level. And with doors closed, just he and them, that's when he told them to remember him.
प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अलग से ऊपरी कमरे में ले गया जब कोई नहीं था, चुपचाप उनके सामने इस विधि को बताया.
We're not saying that this has to be secret.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसे गुप्त रूप से करना है.
We're not saying that we tell unbelievers that they mustn't come in.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अविश्वासियों से कहें कि हम जो कर रहे हैं उसको देखने के लिए मत आना.
But respectfully, I don't think that the audience is the world.
लेकिन मैं बड़े इज्जत के साथ, सम्मान के साथ ये आपको बताना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि ये संसार को दिखाया जा रहा है.
Maybe the second one can give us an answer.
जो दूसरी बात है जो हमें शायद कुछ उत्तर दे पाए.
The woman is witnessing when she covers her head.
ये एक स्त्री अपने गवाही दे रही है जब अपने सर को ढकती है.
Who is she preaching to?
वो किससे प्रचार कर रही है?
For this cause ought the woman to have a sign of authority on her head.
और इस कारण से एक स्त्री को अपने सर पर अधिकार होना चाहिए.
Because of the angels.
क्योंकि स्वर्गदूतों के कारण.
I think the angels are the audience when we break bread.
और जब हम रोटी तोड़ते हैं मेरा यह विश्वास है कि ये स्वर्गदूत हैं जो इस प्रचार को सुन रहे हैं.
You see, Paul says, doesn't he, in Ephesians chapter 3 and verse 10, Paul says, that to the intent that now unto principalities and powers might be made known by means of the church the manifold wisdom of God.
प्रेरित पौलुस इफिसियों की पत्री तीसरे अध्याय के दसवें पद में ऐसा कहता है कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किए जाए.
Ephesians 3 and verse 10 is telling me that today God is using the church as a living object lesson to teach angels things.
Ephesians की पत्री तीसरा अध्याय का दसवां पद हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर आज अपनी कलीसिया को स्वर्ग के इन शक्तियों को एक कुछ सिखाने के लिए एक ऑब्जेक्ट के रूप में, एक वस्तु के रूप में उपयोग में ला रहा है.
When Israel had the Passover, the nations were their witness.
और जब इस्राएल ने फसह के पर्व को मनाया, चारों ओर के राज्यों ने उसको देखा.
And when they have the sacrifices in the millennial temple,
और हजार बरस के राज्य में जब वहां पर मंदिर में बलि चढ़ाए जाएंगे,
the nations will be their witness.
और वहां पर सारी जातियां उसको देखेंगी.
That makes sense because Israel is God's earthly people.
इससे मतलब निकलता है क्योंकि इसराइल जो है परमेश्वर के पृथ्वी में रहने वाले लोग हैं.
But we're God's heavenly people.
लेकिन हम जो हैं स्वर्गीय लोग हैं.
So it would follow, wouldn't it, that the witness that we are having is to angels, not to men.
इसलिए क्योंकि हम स्वर्गीय हैं इसलिए यह अवश्य निश्चित रूप से मालूम पड़ता है कि ये स्वर्ग के दूतों के सामने हम ये प्रचार कर रहे हैं.
Let's come back to the first outward thing, baptism.
आइए हम बपतिस्मा के बारे में देखिए.
Who's the witness for baptism?
बपतिस्मा जब होता है तो कौन गवाह है?
Believers, yes.
विश्वासी हैं.
Unbelievers?
अविश्वासी.
So baptism is a witness to unbelievers.
इसलिए बपतिस्मा अविश्वासियों के लिए गवाही है.
Well, why was the Philippian jailer baptized in the middle of the night?
एक फिलिपी का विश्वासी को अर्धरात्रि को क्यों बपतिस्मा दिया गया?
If baptism is a witness to the world. Now it can be, of course. But we do baptize publicly because we want the world to see something. Yes.
Baptisma samsar ke liye nahi ho sakta. Bhale hi hum jab sabke samne karte to kai log dekhte hain.
But first of all, who does it speak to?
Lekin sabse pehle ye kisse baat kiske bare mein bata raha hai?
If it was for the world, then when the jailer in Acts 16 got saved,
अगर ये संसार के लिए गवाही या प्रचार का माध्यम होता तो जो जेलर जो अर्धरात्रि में उद्धार में आया है
they would have waited until daytime,
वो सुबह तक इंतजार करते
gone to a public place,
और एक सामूहिक स्थान पे जाते
baptized, they didn't do that.
और वो उनको बपतिस्मा देते लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.
What's baptism saying? When I got baptized, what did it say?
और हर बपतिस्मा में हम देखते हैं जब हमारा बपतिस्मा हो क्या कहा गया था.
Romans 6 teaches me,
रोमियो की पत्री उसका छठवें अध्याय में हमें सिखाया जाता है,
because I have died with Christ,
क्योंकि मैं मसीह के साथ मर गया हूं,
because the old man has been crucified with Christ,
क्योंकि पुराना मनुष्य तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है,
he's buried,
वो गढ़ा हुआ है.
And out of the grave there comes a new man to walk in newness of life.
और उस कब्र में से एक नया पुरुष बाहर आ रहा है जो मसीह के नए चाल चलन को चलेगा.
I am identified with the death, burial and resurrection of Christ.
और मैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु उसका गाड़े जाना और उसको उठाए जाने के साथ अपने आप को जोड़ता हूं.
The only way the world will know anything about that is if we have a preacher to explain it to them.
एक संसार को यह सत्य का ज्ञान तभी हो सकता है अगर वहां पर कोई वहां पर इसके प्रचार कर रहा हो.
But isn't it interesting that none of these three things, baptism, head covering, Lord's Supper,
लेकिन कितनी रोचक बात है कि बपतिस्मा और जो सर ढकना है और जो प्रभु भोज है,
none of them needs to have one word said.
इन तीनों में ये एक बात बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है.
They say everything by what they are visually.
ये इन बात इनको इन, इसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, देखकर ही समझने वाली बात है.
Angels are the watchers.
और जो स्वर्ग दूत है इन बातों को देख रहे हैं.
They don't need any words for this, they just watch.
उनको इसके लिए कोई अर्थ समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सिर्फ देखते रहते हैं.
Who witnessed the death of Christ?
यीशु मसीह की मृत्यु को किसने देखा था?
Angels and men. Angels and men.
हम देखते हैं कि स्वर्ग दूत और मनुष्य.
Who witnessed the burial of Christ?
प्रभु यीशु मसीह को जब गाड़े गए किन किन लोगों ने उसको देखा था?
Angels and men.
हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग दूत और मनुष्य.
Who witnessed the resurrection of Christ?
यीशु मसीह के पुनरुत्थान को किसने देखा?
Only angels.
सिर्फ स्वर्ग दूत.
No man recognized it.
कोई भी मनुष्य उसको पहचान नहीं पाया.
So what's baptism for?
तो बपतिस्मा किसके लिए है?
When I got saved by the grace of God,
जब प्रभु की अनुग्रह के कारण मेरा उद्धार हुआ,
it was on August the 15th, 1963.
1963 अगस्त महीने के 15 तारीख को हुआ था.
And when I got saved, God knew and I knew.
जब मेरा उद्धार हुआ था, परमेश्वर वो जानता था और मैं ही जानता था.
How does the Bible tell me that my fellow men will know?
कैसे बाइबल हमें याद स्मरण दिलाता है कि मेरे सहविश्वासी भी सत्य को जानेंगे?
The Bible never once tells me that my fellow men will know I'm a believer because I get baptized. The Bible doesn't tell me that.
पवित्र शास्त्र बाइबल कभी भी ये नहीं बताती कि मैं उद्धार में आ गया हूं जब मेरी बपतिस्मा होती है.
Men will know by two ways that I belong to Christ.
मैं मसीह का हूं करकर मनुष्य दो तरीके से जान पा सकता है.
I confess him publicly and my life changes.
मैं उसकी गवाही दूसरों के सामने देता हूं और मेरा जीवन बदल गया.
By life and by lip I show that Jesus Christ is Lord.
मेरे जीवन के द्वारा, मेरे होठों के द्वारा मैं प्रकट करता हूं कि यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है.
Now the angels in heaven, according to Ephesians 3 verse 10,
अब इफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय के 10वें पद के अनुसार जो स्वर्ग में जो स्वर्ग दूत हैं,
they are going to be instructed by the church. They are being instructed by the church.
वो कलीसिया के द्वारा विभिन्न प्रकार के ज्ञान उनको प्राप्त हो रहा है.
How do they know who is saved and who is not saved?
उनको ये कैसे मालूम है कि किसका उद्धार हुआ किसका नहीं हुआ?
When those angels look down from heaven, how do they know who on earth acknowledges Jesus Christ as Lord?
स्वर्ग से ये स्वर्गदूत जब पृथ्वी पर देखते हैं, उनको कैसे मालूम होता है कि इनमें से कौन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और स्वीकार किया है?
They see people getting baptized.
वो लोगों को जब बपतिस्मा लेते हुए देखते हैं.
So now I'm not saying that baptism is only for the angels.
मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि बपतिस्मा सिर्फ स्वर्ग दूतों के लिए है.
But I'm saying it is mainly for them.
लेकिन मैं बताना चाहता हूं मुख्य रूप से ये उनके लिए है.
They now see in a world of rebellion.
वो देखते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध बगावत में गुट उठ खड़ी हुई दुनिया के बीच में,
in the world that crucified the Son of God,
एक संसार जिसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया,
they saw him come from heaven,
उन्होंने देखा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए थे.
They announced his birth in the hills of Judea.
और यहूदा के पहाड़ों पे उन्होंने इस बात का ऐलान किया उसका जन्म हो रहा है.
They came and strengthened that man when he was tested in the wilderness.
और जब मरुस्थल में वो अकेला था और उसकी परीक्षा ली जा रही थी, वो स्वर्गदूत आकर उसे शक्ति दे सामर्थ्य देते हैं.
They were waiting to come and deliver him when men were putting him to an open shame.
और जब लोग उसके हंसी उड़ा रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे, वो आना चाहते थे उसकी मदद के लिए.
And the order never came.
लेकिन प्रभु की ओर से उनको आज्ञा नहीं मिला.
And with amazement they watched as the one who filled heaven with his glory was taken by wicked hands and crucified and slain.
और स्वर्ग से अद्भुत आंखों के द्वारा उसने देखा स्वर्ग में अपनी महिमा के द्वारा सब कुछ को भर देने वाला कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्यों के द्वारा क्रूस पर मरने के लिए ले जाया जा रहा है.
They were there to proclaim his resurrection.
वो वहां थे उसके पुनरुत्थान की घोषणा करने के लिए.
Why seek ye the living among the dead?
उसने कहा कि मरे हुए जीवितों को मरे हुओं के बीच में क्यों ढूंढते हो.
He's not here, he's risen.
वो यहां नहीं है, वो जी उठा है.
Come see the place where the Lord lay.
आओ देखो प्रभु जहां था उस स्थान को देखो.
And then 40 days later.
40 दिन के पश्चात.
Angels formed a guard of honor in heaven.
स्वर्गदूतों ने आदर के और सम्मान के साथ स्वर्ग में चारों ओर खड़े हो गए.
And in wondering amazement those angels watched as through their ranks there came a man.
और बड़े आश्चर्य के साथ उन्होंने देखा कि उनके मध्य में से एक मनुष्य ऊपर आ रहा है.
And a man ascended above every height of heaven and sat at the right hand of the throne of God.
और एक मनुष्य आकाश में उनके बीच से उठता हुआ स्वर्ग के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर बैठ गया.
The angels have seen all that.
स्वर्गदूत ने सारे दृश्य को देखा.
And they wonder at the purpose of God.
और वो परमेश्वर की योजनाओं को देखकर आश्चर्य में पड़ गए हैं.
So God says, I will teach you about my purpose.
इसलिए परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं अपने उद्देश्यों को तुम्हें सिखाऊंगा.
And I will do it by means of the church.
और मेरे उद्देश्यों को मेरी कलीसिया के द्वारा तुम्हें सिखाऊंगा.
You know who am I? They acknowledge me. They acknowledge the lordship of Christ in baptism.
और तुम जानते हो मैं कौन हूं क्योंकि बपतिस्मा में वो मेरे प्रभुत्व को अपने जीवन में एक और बार स्वीकार.
They acknowledge the headship of Christ in the covered head of the woman and the uncovered head of the man.
एक स्त्री जब अपनी सर ढकती है और एक पुरुष जब अपना सर नहीं ढकता है वो मेरे जो सर का शीर्ष स्थान है उसको वो स्वीकार कर रहे हैं.
And they proclaim the lordship of Christ in the breaking of bread.
और जब वो रोटी तोड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व का वो ऐलान करते हैं, घोषणा करते हैं.
We have the privilege, brethren and sisters, of maintaining a memorial to God and His Christ in this age.
प्रियो, परमेश्वर ने सौभाग्य आपको और मुझको दिया है कि प्रभु परमेश्वर और उसके पुत्र मसीह के स्मृति में हम कुछ काम को कर पाए.
You imagine how it would be if in the largest sports stadium in India.
आप ऐसा सोच लीजिए भारतवर्ष का सबसे बड़ा खेल कूद का जो स्टेडियम है.
आई डोंट नो वेयर इट इज, वेयर इज इट, व्हिच सिटी? दिल्ली?
नो, कैलकटा.
कैलकटा
गार्डन्स इन कैलकटा.
हाउ मेनी डज इट होल्ड? 1 लाख. ओके, सो देयर वी आर नाउ, वी आर इन दिस स्पोर्ट्स स्टेडियम इन कलकत्ता.
अब ऐसा सोच लीजिए, चलिए हम कलकत्ता के स्पोर्ट्स स्टेडियम में है.
1 लाख सीट्स.
1 लाख सीट.
If on a Lord's Day morning,
अगर प्रभु के दिन के सुबह,
a table was set in the middle of that sports stadium,
वो स्टेडियम के बीचों बीच प्रभु का मेज लगाया गया है,
bread and wine,
रोटी और दाखरस रखा हुआ है,
and we were sat around that table,
और हम उस मेज के चारों ओर बैठे हैं,
and in every seat there was an Indian gentleman or lady,
और वहां पर 1 लाख सीट में एक भारतीय पुरुष और स्त्री बैठे हुए हैं.
Would you feel nervous?
आपको थोड़ा झिझक लगेगा या नहीं?
Would you feel that there was a great sense of occasion?
आपको लगेगा कि एक महान अवसर आया है?
Okay. Take all the Indian gentlemen and ladies out of those seats.
जितने भारतीय स्त्री पुरुष वहां बैठे उनको उस सीट से हटा दीजिए.
And in every seat put an angel.
और हर सीट में आप एक स्वर्गदूत को बिठा दीजिए उस 1 लाख सीट में.
And they're watching.
और वो इस काम को देख रहे हैं.
Peter says they are leaning forward earnestly to watch.
पतरस कहता है कि वो झुककर इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं.
They're not sitting back, they're leaning forward, they're watching.
पीछे आराम से नहीं बैठे हैं, वो झुककर इस दृश्य को देख रहे हैं.
This whole matter of the Son of God becoming flesh and dying on earth Why?
ये परमेश्वर का पुत्र देहधारी होकर इस जगत में अपने प्राणों को दे देता है, ये क्यों?
And as oft as ye eat this bread and drink this cup, you do show forth the death of him who is Lord till he comes.
और जब जब तुम इस रोटी से भाग लेते हो और इस दाखरस से पीते हो, तब तक तुम उसके उस प्रभुत्व को दिखाते हो जो तुम्हारे लिए बलिदान हुआ है.
This isn't some brethren ritual.
ये कोई ब्रदरन लोगों का कोई रीति रिवाज नहीं है.
This is a living memorial to the Lordship of Christ.
ये प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के लिए एक जीवित स्मृति चिन्ह है.
I guess you'd have to be quite special to be on the parade, the Republic Day parade down the Rajpath in Delhi.
राजपथ में दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस का परेड होता है उसमें शामिल होना तो बड़े गर्व का विषय है.
You'd have to be special.
आप अगर उसमें शामिल हैं तो आप एक विशेष व्यक्ति हैं.
Dear saints of God, how special are we when we have been given this precious privilege of showing the death of him who is Lord till he come.
प्रियो, ये कितना बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में है कि उस प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व को, जो हमारा प्रभु है, उसके आगमन तक इस प्रभुत्व को स्मरण करने के लिए अवसर मुझको और आपको दिया गया है.
See why Paul was so insistent that things had to be right.
देखिए, पौलुस इस बात के लिए बड़ी बेदारी के साथ बहुत प्रयत्न करता है कि बातें सही ढंग से हो.
It was a disorderly assembly, Corinth.
कुरिन्थ के कलीसिया में सब कुछ गड़बड़ था.
There are many disorderly assemblies in this country.
और हमारे देश में भी बहुत सारी कलीसियां जहां सब गड़बड़ चल रहा है.
You want to see a disorderly assembly, you need to come with me sometime to Andhra.
अगर आप कलीसिया में जो गड़बड़ चल रहा है उसको अगर आपको आंखों से देखना है तो आंध्रा में मेरे साथ आइए.
I'm not being disrespectful to our Telugu brethren.
हमारे मेरे तेलुगु भाइयों के प्रति मैं असम्मानजनक बातों को बड़े सम्मान के साथ ये कह रहा हूँ.
Just recently I was breaking bread first generation assembly.
अभी मैं आंध्रा में एक पहले जो युग पीढ़ी के कलीसिया में रोटी तोड़ रहा था.
200 believers.
वहां 200 विश्वासी थे.
The longest any of them had been saved was about 8 months.
और वहां पर सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति है जो उद्धार में आया वो 8 महीने का है.
Hindu idolaters and now they're saints.
वो सब मूर्ति पूजक थे.
एंड वी मेट इन अ क्लियरिंग in the village in part of the jungle area. This was in the Godavari region.
Ye Godavari kshetra mein tha, jungle mein humne wahan ke jhaadiyon ko hataya.
Within 1 hour we had, I promise, we had buffaloes.
Aur
this is in where we are gathering, we had buffaloes.
Jahan par hum ikatthe wahan pe kuch bhains the.
We had dogs.
Kutte bhi the.
Chickens.
Wahan par kuch murghi ke bacche bhi the.
A camel.
Aur ek oont bhi tha.
Monkeys.
कुछ बंदर भी थे.
And none of them in fellowship.
और उनमें से कोई भी संगति में नहीं था.
That was quite literally what was going on.
और वास्तविक रूप से वहां पर जब हम रोटी तोड़ रहे थे ये सारी बातें थी.
Believers and villagers not saved all mixed together.
विश्वासी भी थे, अविश्वासी जो गांव के थे सब एक साथ बैठे हुए थे.
And at the end of it all they look and they say, brother, teach us.
और अंत में ये सब होने के बाद वो हमसे कहते हैं, भाई आप कुछ शिक्षा दो.
What a privilege.
कितना सुंदर सौभाग्य.
We said, brethren, it would be a good idea, wouldn't it, if next week all the villagers, you sit them across there. It's nice to see them, but they can sit over there, and then the assembly can sit over here. The Christians can sit there, and they can watch them.
मैंने उनसे कहा कि भाइयों, क्रम में कुछ सुधार लाते हैं. जितने भी अविश्वासी गांव वाले देखने के लिए आए उनको आप एक किनारे बिठा दीजिए और दूसरे जितने भी हमारे कलीसिया के विश्वासी हैं वो सब एक किनारे में बैठ जाएं.
And you get two or three boys with sticks, and you keep all the pigs and the dogs and the cattle, you keep them all out.
और आप दो तीन लड़कों को एक लकड़ी देकर खड़ा कर दीजिए ताकि जो सुअर अंदर आ रहे हैं, जो भैंस अंदर आ रहे हैं, उनको वो बाहर भगा सके.
What are we doing?
हम क्या कर रहे हैं?
We're setting order upon God's assembly.
हम कलीसिया में एक क्रम को लेकर आने हैं.
That's what Paul was doing with Corinth.
और कुरिन्थ में भी, कुरिन्थ की कलीसिया में भी प्रभु यीशु मसीह प्रेरित पौलुस इसी काम को कर रहा है.
You see, he said, "You're coming together."
वो कहता है कि देखो तुम एक साथ इकट्ठे हो रहे हो.
But you cannot keep the Lord's Supper the way you come.
लेकिन तुम आकर जिस प्रकार प्रभु भोज में शामिल हो रहे हो ऐसा तुम कर नहीं सकते.
There are divisions among you.
तुम्हारे बीच में झगड़े हैं.
There must be, he says, the sects, so that those who are approved among you can be seen.
वो कहता है कि यहां पर कुछ अलगाव होना चाहिए ताकि जो प्रभु के अलग किया गया वो दिखाई दे.
There are those who are saying, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, I am of Christ.
तुम्हारे बीच में कुछ लोग कह रहे हैं मैं पौलुस का हूं, कुछ लोग कह रहे हैं मैं कैफा का हूं, कुछ लोग कह रहे हैं मैं मसीह का हूं.
Then others of you are coming and you're bringing picnic bags with you.
और कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं और पिकनिक मनाने के लिए पहुंच गए हैं.
And you're eating and you're drinking as though this was some kind of festival.
और कलीसिया में बैठकर तुम खा रहे हो, पी रहे हो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे त्योहार मनाया जा रहा है.
Brethren, he says, you're not to do this.
उसने कहा, भाइयों, तुम ये मत करो.
He's telling them to keep out everything that's of this world.
वो कह रहा है कि संसार की सारी बातों को यहाँ से दूर रखो.
And he's setting order on the assembly.
और वो कलीसिया में एक क्रम को ला रहा है.
He said, now when you come together.
वो कह रहा है कि जब तुम इकट्ठे होंगे.
Then you men, you must have your heads uncovered.
वो कहता है कि जितने भी पुरुष हैं उनके सर ढके ना हो.
You women, you must have your heads covered.
और जितनी स्त्रियां हैं वो अपने सर को ढके रखे.
He speaks of three glories in 1 Corinthians 11.
पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय में तीन महिमा के विषय में वो कहता है.
Notice this.
उन तीनों को देखिए.
Verse number 7.
पद 7 को देखिए.
A man indeed ought not to cover his head for as much as he is the image and glory of God.
पुरुष के लिए अपना सिर ढांकना उचित नहीं क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिरूप और महिमा है.
So there is a glory of God represented by the head of the man.
इसलिए यहां परमेश्वर की एक महिमा है जो पुरुष के सिर के साथ जोड़ा गया है.
And then he speaks of the rest of the verse, verse 7, but the woman is the glory of the man.
और अंतिम भाग में सातवें पद के वो कहता है, परंतु स्त्री तो पुरुष का महिमा है.
So that's two glories.
यहाँ पर दो महिमाओं को हम पाते हैं.
Glory of God.
परमेश्वर की महिमा.
Glory of the man.
पुरुष की महिमा.
Now look at verse 15.
अब देखिए पद 15.
If a woman have long hair, it is a glory to her.
और यह की भी कि स्त्री के लंबे बाल उसकी शोभा है.
So then we have three glories when the church is gathered together.
इसलिए जब कलीसिया आती है तो तीन प्रकार की महिमा को हम देखते हैं.
But only the glory of God is to be seen.
लेकिन सिर्फ परमेश्वर की महिमा दिखनी चाहिए.
So that means the other two glories have to be covered.
इसका यह अर्थ हुआ कि बाकी दोनों महिमाओं को ढकना जरूरी है.
The glory of man is the head of the woman.
जो पुरुष का महिमा है वो स्त्री का सर है.
And the way that that glory is covered is by the long hair of the woman.
और वो महिमा इस स्त्री के लंबे बालों के द्वारा ढकी जाती है.
But even as she covers the glory of the man,
लेकिन जब एक स्त्री उन बालों के द्वारा आप पुरुष के महिमा को ढकती है,
with her natural long hair,
और उसका जो लंबा बाल है,
the very covering is a glory to her.
वो जो उसके बाल हैं यहाँ लिखा हुआ है उसके लिए महिमा का विषय है.
So it needs to be covered as well.
इसलिए उसको भी ढकना जरूरी है.
So the woman bears the responsibility of declaring the headship of Christ.
इसलिए स्त्री को यह जिम्मेदारी दी गई है कि प्रभु यीशु मसीह के सिर का जो प्रभुत्व है उसकी महिमा को दिखाए.
She does so by having two coverings.
वो इस काम को करने के लिए दो प्रकार की ओढ़नी है उसकी.
Her long hair.
एक तो उसका लंबा बाल.
And an artificial covering to cover the long hair.
दूसरा एक नकली ओढ़नी जो उसके लंबे बालों को भिड़क के रखती.
This has got nothing to do with subjection to men.
ये किसी भी प्रकार से एक पुरुष के अधीन होने के विषय को नहीं सिखाती.
Verse 10 says.
पद 10 कहता है.
The reason she's doing this.
वो किस कारण से ऐसा करती है.
Is because of the angels.
स्वर्गदूतों के कारण.
Who says the sisters don't have a ministry?
कौन कहता है कि बहनों की कोई सेवकाई नहीं.
The sisters have a most vital and wonderful ministry.
बहनों के पास सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई है.
Theirs is the main responsibility to proclaim to those angels that this company of sinners saved by grace acknowledges Jesus Christ as head and Lord.
उनके लिए परमेश्वर ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी है कि वो कलीसिया में अपने इस दायित्व को निभाते हुए और इन स्वर्गदूतों के सामने ये प्रकट करे कि यहां पर एक झुंड है जो प्रभु यीशु मसीह के सिर के स्थान को संपूर्ण प्रभुता देने के लिए तैयार है.
Why are we doing all this?
हम इन सारी बातों को क्यों करते हैं?
Why today in India and UK and everywhere else when we meet on the first day of the week and proclaim the Lordship of Christ?
और क्यों हम भारत में और इंग्लैंड में और अन्य भागों में जब रविवार के दिन एकत्रित होकर प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व की महिमा को या घोषणा करते हैं?
Why are we so interested in our ministry to those angels?
हम स्वर्गदूतों के प्रति हमारी सेवकाई के लिए इतनी रुचि क्यों रख रहे हैं?
Because Paul says in 1 Corinthians 6,
क्योंकि प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों के 6वें अध्याय में याद दिलाता है.
Don't you know?
क्या तुम नहीं जानते?
Don't you understand that one day you are going to judge angels?
कि एक दिन तुम स्वर्गदूतों पर न्याय करोगे.
He doesn't mean judge in the sense of pass sentence upon them.
जब वो कहता है न्याय करना, इसका मतलब नहीं कि उनके ऊपर कोई गलतियों के लिए सजा सुना रहे हो.
The word means administer.
जज या न्याय करना, इसका मतलब उनके ऊपर शासन चलाएंगे.
One day he says you're going to administer these angels.
प्रेरित पौलुस कहता है कि एक दिन इन स्वर्गदूतों के ऊपर तुम शासन करोगे.
Because in the millennial administration of our Lord Jesus Christ.
क्योंकि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने हजार वर्ष के राज्य में जब अपनी शासन को चलाएगा,
God is over all, blessed forever.
परमेश्वर सबके ऊपर अनुग्रह से भरा हुआ है.
The Lord Jesus Christ is King of Kings and Lord of Lords.
प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होकर हम उसे देखेंगे.
At his side is a lovely bride.
और प्रभु यीशु मसीह के बगल में एक सुंदर कन्या है, उसकी वधु है.
She is going to share in his glory.
वो उसकी महिमा में सहपात्र हो जाएगी.
She is going to be a help for him in his administration.
और ये वधु इस शासन को चलाने में अपने प्रभु के साथ भागी हो जाएगी.
In the open heaven of the millennium,
और मिलेनियम के और जो हजार साल के जो राज्य उसके खुले हुए स्वर्ग में,
where we will be with Christ,
हम यीशु मसीह के साथ होंगे.
We will be administering the angelic realm.
हम स्वर्गदूतों के उन सारे शक्तियों के ऊपर शासन चलाएंगे.
Those angels in turn will bring the instructions down to earth.
ये सारे स्वर्गदूत हम जो कहेंगे उन बातों को इस पृथ्वी पर लाएंगे.
They will deliver instruction to Israel.
वो इसराइल को हम जो आदेश देंगे उसको पूरा करने के लिए कहेंगे.
Israel will pass that administration out to the Gentile nation.
और जो इसराइल है वो अन्य जाति देशों के ऊपर उस शासन को आदेशों को पूरा करवाएगा.
Ability will come back the other way.
और जिम्मेदारी का जो दायित्व है वो वापस आने लगेगा.
From the nations to Israel.
यहां पर जो जाति है उनके पास से इसराइल के पास.
From Israel through the nations, through the angels to the church.
इसराइल से स्वर्गदूतों के द्वारा कलीसिया के पास.
From the church to Christ.
कलीसिया से मसीह के पास.
Christ to God who is over all.
मसीह से परमेश्वर के पास जो सबके ऊपर है.
A glorious, wonderful administration, and you and I are going to be part of it.
देखिए उस बड़ी शासन प्रणाली, अद्भुत शासन प्रणाली जिसमें मैं और आप एक दिन सहभागी होने जा रहे हैं.
That dream that Jacob had in Genesis 28 is brought to pass.
वो स्वप्न जो उत्पत्ति के 28वें अध्याय में याकूब ने देखा था वो पूरा होगा.
The Lord's words to Nathaniel in John chapter 1 will be brought to pass.
Nathaniel से प्रभु यीशु मसीह ने जो योहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में कहा था वो भी पूरा होगा.
The angels of God ascending and descending around the Son of Man.
हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के पुत्र के चारों ओर स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं.
Don't you know you will judge angels?
क्या आपको नहीं मालूम कि तुम स्वर्गदूतों के ऊपर न्याय करोगे?
Oh, the wonder, the beauty, the glory of the administration of God.
देखियो परमेश्वर के न्याय की महानता को, अद्भुत चित्र को देखिए.
And until the Savior comes.
और जब तक उद्धारकर्ता ना आ जाए.
Until all these glorious prophetic events run their course.
और जब ये सारी भविष्यवाणियों की जो बातें हैं अपने समय पर पूरा हो जाएगा.
Until Israel is restored and keeping those sacrifices in the temple.
और जब इज़राइल की पुनर्स्थापना हो जाएगी और मंदिर में उनके बलिदान चढ़ाए जाएंगे.
Until then.
तब तक.
Responsibility is given to local assemblies of God's people.
आज परमेश्वर के स्थानीय कलीसियाओं को कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं.
As oft as you eat this bread.
जब कभी भी तुम इसमें से भाग लोगे, इस रोटी से भाग लोगे.
And drink this cup.
और इस कटोरे से शामिल होंगे.
Ye do show forth the death of him who is Lord.
तुम उसके मृत्यु का संदेश देते हो जो प्रभु है.
Till he come.
जब तक वो आएगा.
Till he come.
जब तक वो आएगा.
My beloved brethren.
मेरे प्रिय भाइयों.
I don't know if I'm going to see you again down here.
मुझे नहीं मालूम कि अब मैं दोबारा आपको यहां देखूंगा.
It's been a good week. I've enjoyed it. Thank you.
ये एक सप्ताह मेरे जीवन बड़ा आनंद का समय था.
Tomorrow morning, early God willing, I go to the airport to go to Singapore.
कल सुबह मैं सिंगापुर जाने के लिए एयरपोर्ट चला जाऊंगा.
And on Saturday, from Singapore to Burma.
और शनिवार को सिंगापुर से बर्मा की ओर जाऊंगा.
If there's a little place in your prayers, we would value that.
अगर आपके पास प्रार्थना में कुछ स्थान और बच गए हैं.
There are believers in Burma, but no assemblies, as the New Testament teaches them.
तो हम आपकी प्रार्थनाओं को चाहते हैं क्योंकि बर्मा में कुछ विश्वासी आगे आए हैं लेकिन हमारी कलीसिया नहीं.
And we hope to spend 10 days just teaching these believers the word of God.
हम वहां पर 10 दिन इन विश्वासियों को परमेश्वर के वचन को सिखाना चाहते हैं.
But only if the Lord will.
लेकिन अगर ये प्रभु इसकी अनुमति दे तब ही.
Only if he hasn't come.
अगर वो उनका आगमन नहीं होता.
I believe with all my heart it is more likely I will meet you again in heaven than I'll meet you down here.
मैं संपूर्ण हृदय से इस बात को जानता हूं कि चांस ज्यादा है कि मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं इस पृथ्वी के बजाय.
But brethren, I know this, we're going to meet again.
लेकिन प्रियो एक चीज मैं जानता हूं, एक दिन हम जरूर मिलेंगे.
I think when I get to heaven it won't be long before a brother is going to come over to me.
मुझे मालूम है कि स्वर्ग में जब मैं पहुंचूंगा बहुत देर नहीं लगेगा कि भाई मेरे पास आएंगे.
He'll be changed, of course.
हम तो परिवर्तित रूपांतरित हो जाएंगे निश्चित रूप से.
But I'll know him and he'll know me.
और
I'll know him and he will know me.
मैं उसे जानूंगा वो मुझे भी जानेगा.
He said, brother, the last time I saw you was in Bombay.
आप कहेंगे भाई मैं अंतिम बार आपको शायद मुंबई में देखा था.
And you know, brother Koshy was right.
और भाई कोशी सही कह रहे थे.
We will know it all then, won't we?
तब सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी.
Brethren, it's been a great pleasure.
भाइयों आपके साथ समय बिताया बड़ा आनंद की क्षण.
And we very sincerely commit you to the grace of God.
और हम आपको परमेश्वर के अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं.
Go back home to your assemblies at the end of this week.
इस सप्ताह के अंत में आप अपनी कलीसियाओं में चले जाएंगे.
Take with them the truth of these things.
परमेश्वर के वचन के सत्यों को साथ लेकर जाइए.
Feed your brethren and sisters on Christ.
अपने भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के का भोज खिलाएं.
Teach them the word.
उनको वचन सिखाएं.
And the Lord bless you and your families.
परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीष से भर दे.
Till he come.
जब तक वह ना आ जाए.
Thank you.
धन्यवाद.